यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुंदास जी महाराज द्वारा दिनांक 5/92 को प्रातः लगभग 8:30 बजे श्री रामगढ़ में हुआ।
पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण।
खुले में से बहुत कम मिलेगी और जगह खुले से ये झिंटकी मिलती है वो ना मिलता ही नहीं। झिंटा उगा दिया बस। अभी इसमें रामायण माया है अबला कच भूषण भूरी सुधा। तो अबला कच भूषण श्री जयधर शेर जी ने कहा था कि इसमें रामायण माया अब का अबला कच भूषण तो केसों का क्या गहना पहनाएंगे, गुजरी गजरी बनेंगे, कंठला बनेगा, कड़ा बनेगा, केसों का भूषण कैसे होगा ये समझ में नहीं आती। आज पता लगा कि केसों का भूषण मानो माथा उगाड़ रखना, ये केसों का भूषण है। पहले बोर होता था जो सोने का होता था, सिर पर सोना, बेचक आज खीला है लोहरा, लोह का खीला सोने की जगह। ये दशा हुई है आपकी, तो ये वेश बदलने से आपकी जाति नष्ट हो जाएगी। तो वेशभूषा और भाषा और एक आपका व्यवसाय, आपका काम धंधा, जैसे व्यापार करना तो व्यापार करना अपना रहना चाहिए, खेती अपनी करनी चाहिए, गौओं को रखनी चाहिए, अपने जो जिस तरह से जीविका चलती है उस काम व्यवसाय चाहिए। आज काम छोड़ा रहे हैं और बहुत ही पतन की तरफ जा रही है दुनिया, अपना देश तो महान पतन की तरफ जा रहा है। तो अपना व्यवसाय है वो वही रहना चाहिए अपने। आज अच्छे अच्छे पंडितों के लड़के अंग्रेजी पढ़ते हैं, संस्कृत नहीं पढ़ते, कितना पतन होगा। ब्राह्मण संस्कार करवाने वाला ब्राह्मण नहीं मिलता, किसी के पुत्र पैदा हुआ है तो नामकरण संस्कार करने वाले ब्राह्मण कम रह गए। विवाह करना है विवाह संस्कार है, यज्ञोपवीत है, बालकों के जो संस्कार होते हैं वो संस्कार कराने वाले ब्राह्मण कम रह गए, अंग्रेजी पढ़ गए। तो अपने वेशभूषा रखना, अपना व्यवसाय जिससे अपनी जीविका चलती है वो अपना कायम रखो, नहीं तो आपकी जाति नष्ट हो जाएगी। और एक खान पान सबके साथ खाओ, सबसे खाओ तो वे आपके अच्छे अच्छी चीज नष्ट हो जाएगी, बुरी चीज आ जाएगी। कई जगह हमने देखा है जिस समाज में लहसुन और प्याज नहीं खाते वे भी वो खाने वालों साथ लग गए तो लहसुन प्याज तो दूर रहा, अंडा मांस मछली उनमें आ गया। ये नहीं आपकी शुद्धि वे समझ लेंगे उनमें आ जाएगी, ये नहीं उनके अशुद्ध खाना आप में आ जाएगा। तो आपकी जो पवित्रता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैसी इनमें जो पवित्रता निर्मलता आपकी है वो सब नष्ट हो जाएगी। ये हमने देखा है, हमने देखा पता है हमारे को। तो खान पान एक होने से उनकी अशुद्धि आप में आ जाएगी, आपकी शुद्धि उनमें नहीं आएगी। ऐसी बात भी बहुत पसंद हो गया है, अंडा है मछली है मांस है बहुत ही प्रयुक्त हो गया है। अगर भोजन आप अपने घर पर करते और आपस में नहीं मिलाते तो इतनी अशुद्धि जल्दी नहीं आती, इतनी जल्दी अशुद्धि आ गई, क्योंकि आप वेश वो भोजन भी ऐसे सबके साथ कर लेते हो, ऐसे ही रोटी और बेटी कन्या दे दी, कन्या ले ली किसी जात का लड़का, किसी जात की लड़की, तो वर्ण संकर पैदा होंगे। अर्जुन घबरा गया, महाराज वर्ण संकर हो जाएगा। अर्जुन के युद्ध से इनकार करने का एक मतलब ये भी बताया कि महाराज हम अगर युद्ध करेंगे तो ये जानकार आदि मर जाएंगे, तो उनके पीछे स्त्रियों और बालक है, प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्री सुदुष्टा सुभाषणे जायते वर्ण संकर संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्यते। तो शंकर वर्ण शंकर पैदा हो जाएंगे। आज वर्ण शंकर जानकर कर रहे हैं, लड़की किसी जाति का, लड़का किसी जाति का, तो इसने क्या हो जाए, अब जाति क्या होगी, वो शंकर दोष वर्ण शंकर दोष आ जाएगा। तो लड़की आना जाना दूसरे वर्णों का दुष्वर्ण में होने से ये जाति नष्ट हो जाएगी। मानो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र ये कोई रहेगा ही नहीं। कलयुग आया जो पहला रामायण में आरंभ में जहाँ कलयुग का वर्णन आया है, आरंभ में श्री गणेश का वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोध सब नर नारी। शास्त्र के कहने लग गए हैं लोग कि ये जो कलयुग में क्या होगा कि वर्ण धर्म नहीं रहेगा, आश्रम से नहीं रहेगा और वेद और शास्त्रों की निंदा करेंगे, ऐसा कलयुग में होगा। कोई लोग कहते हैं कि महाराज कलयुग में आप कहते हो कलयुग आया है तो क्या पता है इसका, तो हम इसमें प्रमाण क्या है तुम्हारे कि कलयुग आया है, मेरे काम पर आया है ऐसा। तो मैंने वो प्रमाण आप लोग हो चलते फिरते सारा तीन तीन हाथ के आप प्रमाण हो कि कैसे है? कि पहले कोई वेद की निंदा नहीं करता था, शास्त्रों की निंदा नहीं करता था, ब्राह्मणों की निंदा नहीं करता था, ब्राह्मणों पर दोषारोपण नहीं करते थे पहले, आज उन पर घृणा करते हैं। आसाम में जाने का काम पड़ा तो मेरे सामने वो सत्संग की बातें थे, सुबह सत्संग किया करते थे, तो सत्संग में आए जिसमें मेरे को एक भाई ने कहा देखो महाराज ये आपकी सत्संग करने वाले ये लोगों से घृणा करते हैं। घृणा तो नहीं करनी चाहिए, किसी की घृणा नहीं करनी चाहिए, देखो ये समाज से मत से घृणा करते हैं, मगर घृणा नहीं करनी चाहिए, अपनी शुद्धि रखनी चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं करना, उनसे अपने घृणा नहीं करना, किसी से ही घृणा करना तो दोष है। तो ये करते हैं देखो आपके सत्संग करते हैं, वो तेज हो गया वो, ये तो मैत्र से घृणा करते हैं, समाज से घृणा करते हैं और आप लोग घृणा करते हो ब्राह्मणों से ऋषि मुनियों से, कि ऋषि मुनि पहले पक्षपाती हुए, ब्राह्मणों को तो ऊंचा पद दे दिया, दूसरों को नीचा दे दिया, क्योंकि उन्हें हाथ में कलम थी, इन वजह से ब्राह्मणों ने ये ऋषियों ने खराब काम किया। तो एक तो ऋषियों से घृणा करे, एक मैत्र से घृणा करे, कौन सी घृणा पूरी है बताओ, चुप हो गए। अरे तो आज मैत्र से घृणा करे, तुम ब्राह्मणों से ऋषि मुनियों से जो संसार में पूजनीय आदरणीय है उनके शास्त्रों के पढ़ने में समय लगता है तब समझ में आती है, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए उनसे आप घृणा करते हो, घृणा करता दोष है, तो आप ऋषियों से घृणा क्यों करते हो, तो चुप हो गए। तो अपने वर्ण धर्म है आश्रम धर्म को रखो, भाषा अनेक तरीके की सीखो, व्यवहार सबसे स्वीकार करो, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, आदर करो। अब एक जाति हो जाएगी, एक ही हो जाएगा तो लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई ज्यादा वर्ण आश्रम अलग अलग होने से लड़ाई होती है, और एक हो जाएंगे सब खान पान एक हो जाएगा तो लड़ाई नहीं होगी, बिल्कुल झूठी बात है। लड़ाई जहाँ जहाँ हुई है उनमें रोटी बेटा का बर्ताव नहीं था, वही हुई है। कौरव और पांडवों में लड़ाई हुई तो कौन सा था, सब कौरव कहलाते हैं, कुरुवंशी है, सबके सब एक वंश के, उनमें लड़ाई हुई है। लड़ाई कहीं आपने ब्राह्मणों की मैत्रों की लड़ाई देखी, कहीं बणियों की राजपूतों की लड़ाई देखी आपने, कोई सुना हो इतिहास में भी कि बणिये और राजपूत लड़ पड़े, अलग अलग वर्ण वाली लड़ाई नहीं होती, जीव का एक जगह होती है, अलग अलग वर्ण उस जीव का एक जगह होती तब लड़ाई होती है, वो अपने वर्ण में आश्रम में अपने अपने में होती है। संभाव्य जाति तो भयम, जाति में अगर होता है तो बिल्कुल झूठी बात कहते हैं। आप जब कोई प्रमाण बताओ, आप जिसे सुनते हो फिर मेरे से पूछ लेना, एक एक करने से लड़ाई सोलह गुणी होगी, चार वर्ण है तो चार चार वर्ण में चार सौ का सोलह हो जाए, सोलह गुणी लड़ाई होगी। इस लड़ाई अपने जिनऊ देने के लिए ब्राह्मण कह सकते थे कि मेरा शिष्य मेरे यजमान मैं जनाई दूंगा, वो कहते जिनऊ मैं दूंगा कि मैं वैद्य हूँ, हमारे काम करते हैं मैं वैद्य हूँ काम करता हूँ मैं जनेऊ दूंगा, ऐसे ब्राह्मण लड़ेंगे। कोई समाज आकर लड़ेगा कि मैं जनेऊ दूंगा? अपना अपना काम अलग अलग आप रखो तो मेरे लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई तो जीव का एक जगह होने से होती है, जो एक कर दो तो जीव का एक जगह होती, लड़ाई सौ गुना होगी, बहुत जल्द लड़ाई पैदा होगी। वे कहते हैं कि नहीं, हम नहीं मानते बड़ को नहीं मानते, हम आश्रम को नहीं मानते, हम वेदों को नहीं मानते। ऐसे लोग कई आवाज उठाते हैं आज, आज से 100 वर्ष पहले ऐसी बात नहीं, 50-60 वर्ष पहले ऐसी नहीं थी, मेरे देखते देखते ऐसी बात आ गई है। लोग कहते हम नहीं मानेंगे, तो मैं तो कहता हूँ कि भाई वेदों को नहीं मानेंगे, हम शास्त्रों को नहीं मानेंगे, वर्ण धर्म को नहीं मानेंगे, आश्रम धर्म को नहीं मानेंगे, तो मैं कहता हूँ उनको नमस्कार करना चाहिए। ऐसा कोई आदमी आ जाए कि हम वर्ण धर्म को नहीं मानते, आश्रम धर्म को नहीं मानते, तो दंडोत करो उनको। कहते क्यों? कि हमारे शास्त्रों को सच्चा कर दिया आपने, कि कलयुग आएगा तो कलयुग वर्ण धर्म मानेंगे नहीं, आश्रम धर्म तुम्हारी क्या प्रमाण है? प्रमाण ना आप 3.5 दिन घूम रहे हो, ये प्रमाण है हमारे पक्का। क्यों? कलयुग आए आप वर्ण धर्म नहीं मानते, आश्रम धर्म नहीं मानते, तो आश्रम नहीं मानते तो आप प्रमाण हो, तो चलते फिरते आप प्रमाण हो, तो हमारे शास्त्रों को सच्चा कर दिया आपने। नहीं तो हमारे वहम होता कि कलयुग तो आ गया है, अभी वर्ण धर्म कैसे रह गया, तो आपने पक्का कर दिया। तो ऐसा नास्तिक आदमी करे उनको हाथ जोड़ नमस्कार करना चाहिए, और वे हमारे शास्त्रों को सच्चा करने वाले हैं। क्यों? कलयुग आने पर नहीं मानेंगे, तो नहीं मानने के बाद तैयार हो गए तो इससे प्रस्तुत हो गए, ठीक शास्त्रों की बात होगी, सब शास्त्रों में लिखी हुई सच्ची बातें। इस वास्ते आप ध्यान दो, अपनी जाति का वर्ण का आश्रम का खूब ख्याल रखो, पवित्रता रखो, दूसरों की घृणा मत करो, तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, ये बात ठीक है, किसी का मत करो, सबका आदर करो, सत्कार करो, अपनी अपनी जगह, सब चीजें काम की चीज है, परंतु संकर कर लेना, कर्म संकर होगा, वर्ण संकर होगा, आश्रम संकर होगा, तो संकर दोष ये पैदा हो जाएगा। आज किसी की लड़की किसी का लड़का ब्याह करते हैं, उनको भी अभी तक तो ऐसा कहा जाए कि तुम वर्ण संकर हो, वर्ण संकर तो लड़ाई हो जाएगी, और वर्ण संकर के बाप हो तुम, तो जो वर्ण संकर पैदा करते हो, किसी जाति की लड़की किसी जाति का लड़का ब्याह करते हैं तो वर्ण संकर पैदा होते हैं, तुम तो वर्ण संकर कारक हो, और वर्ण संकर के महाराज संस्थापक और संचालक और उत्पादक हो आप, तो आप लड़ाई क्यों, आपको वर्ण संकर के दोष क्यों मानते हो, आप बुरा क्यों मानते हो? किसी को आ जाए आप वर्ण संकर तो रीच करता है, रीच क्यों करते हो जब आप वर्ण संकर को ठीक मानते हो, और जातियों की ठीक मानते हो ब्याह करना, तो आप जरा सोचो। बहुत वर्षों की बात है, कोई 1982-84 की बात है, 2000 से पहले की बात है, संबंध में याद नहीं है। एक घना भिक्षा ग्रहण में गया था, बागड़ी थे वो, तो वहाँ भिक्षा करने गया तो उनसे मैंने कहा अच्छा बात पूछो भाई, तो स्त्री पुरुष सब आकर बैठ गए, ध्यान देकर सुनना, सब आ गए तो मैंने कुछ बातें सुनाई, तो बातें सुनाओ तब कहा देखो ये स्त्रियां हैं महाराज, आप रात्रि में माहेश्वरी भवन में सत्संग करते हैं तो ये स्त्रियां अकेली ड्राइवर को लेकर अकेली चली जाती है वहाँ आपके सत्संग में, ठीक नहीं है, तो स्त्रियों को अकेले नहीं जाना चाहिए, अपना पति हो, उसका भाई हो, पिता हो, उनके साथ जाना चाहिए, रात्रि के समय अकेली स्त्रियां चाहे जल चले जाए नहीं जाना चाहिए। मैंने ऐसा कह दिया, उन स्त्रियों को लगा दुख कि हम सबसे स्वामी जी के सत्संग में जाते हैं, अरे स्वामी जी हमारे सामने ही पति को ये कह के अकेले नहीं जाना चाहिए, तो मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए। तब ये बोले कि महाराज जी साथ में जाना चाहिए आपके, तो वो पुरुष बोले कि साथ में हमारी ईद चलती तो हम भी ईद के साथ में जाए, हमारे साथ ये चलती है क्या? ये हमारे साथ नहीं चलती तो हम भी इनके साथ नहीं जा रहे। वो कहाँ क्या जो स्त्रियां बोली, ये सिनेमा में ले जाते हैं, ये घोड़ों की रेस होती उसमें हमारे को ले जाते हैं, साथ चलो पर पुरुषों के पास बैठ कर धक्का धक्की, हम नहीं जाती वहां पर। बिल्कुल गलती की बात है आपकी। स्त्रियां कैसे जा रहे, ये इज्जत रखनी है, अपनी प्रतिष्ठा रखती है, इनका कहना सच्चा है। आप ऐसे समुदाय में स्त्रियों को ले जाओ, ये नहीं जाओ अच्छी बात है, अगर आप स्त्रियों को नहीं जाओ ये आपकी गलती है। फिर मैं जोश आ गया, मैंने कहा देखो सुनो आप, आज आप सुधारक बने हो कि हम सुधारक हैं, तो अब वो क्या होना चाहिए। मैंने स्त्रियों को कहते देखो बहनों मेरी बात मांगना मत, मेरी बात कहता हूँ, मेरा कहना आचरण में मत लाना, मेरी बात कहता हूँ। ये जो कह रहे हैं कि हम सुधारक हैं, तो आप जो सिद्धांत मानते हैं कि स्त्रियों के साथ सब पुरुष मिले, पुरुषों के साथ सब स्त्रियां मिले, ये आप एक मानते हो, तो एक ऐसी स्त्री आपके सामने आपके कमरे में सामने कमरे में एक हरेक पुरुष को लेकर के कमर बंद कर ले, आप ना नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? वो ठीक है, तुम्हारी दृष्टि में भी वो पति पड़ता है, हमारी दृष्टि में भी पति पड़ता है। बड़े चक्रा है कि तुम्हारी दृष्टि में पति पड़ता कैसे है, तो तुम्हारी दृष्टि में ऐसे है, तुम कहोगे हरेक के साथ खाना पीना चाहिए, हरेक के साथ मिलना चाहिए, तुम इस सिद्धांत को मानते हो, तो हम स्त्रियों को कहते हैं तुम्हारे पीहर का धर्म नहीं रहेगा, ससुराल का धर्म तुम रखो। अगर आप कहते हो हरेक से मिलना चाहिए, तो आपकी दृष्टि में वो पति पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि उसके साथ क्यों बैठी रात रात तुम्हें, तुम्हारे मन कैसे कर लिया पर पुरुष के साथ, क्योंकि जब आपका सिद्धांत है हरेक साथ हरेक मिले, तो आपके सिद्धांत से भी पति पड़ता है, क्योंकि पति के धर्म का पालन करने पति पड़ता है। कि तुम्हारे धर्म हमारे धर्म से पति पड़ता है, हम भी कहते हैं पति जो माने वही काम करना चाहिए आपको, वही सिद्धांत आपको मानना चाहिए, तो आप पति का सिद्धांत पालन करते, इस बात हमारी दृष्टि में पति पड़ता है। भूल क्या गए और जानते क्या दशा हो गई आपकी, इस प्रताप से जोर से भूले हुए हो, किसी की स्त्री और किसी का पुरुष और कोई हो। मुझे ऐसे आप जरा होश में रहो, ये विचार क्यों नष्ट कर रहे हो, इस शुभ संस्कृति को, शुद्ध नष्ट की संस्कृति को क्यों नष्ट कर रहे हो? आप समझे कि नहीं समझे पता नहीं, ऐसी बात है, ऐसी बहुत सी बातें हैं। अब मरण छिड़ दिया याद आए कई बात है, नहीं तो मेरे तो वो गीता जी की वो व्याकरण बात थी, नारायण नारायण नारायण। अब बात होते हैं तो लोग समझते नहीं। कल एक प्रश्न आया, अब ध्यान देकर सुनना आप लोग, ख्याल करना इस बात का, विशेष ध्यान देना। प्रश्न आया कि आपने नस बंदी और ऑपरेशन बंद कर दिया, तो फिर हम क्या करें? संयम रखो, संयम तो हमारे से होता नहीं, और लड़के पैदा हो जाए तो कोई उपाय बता दूजा, मैं फूट गया कर्म सफाई। मैं क्या बात कह रहा हूँ क्या समझे हो आप? मैं कहता हूँ हिंदुओं की संख्या नष्ट होती चली जा रही है, इस वास्ते आप हिंदुओं की संख्या को बढ़ाओ। 40 करोड़ हिंदू कम हो गया है, और मुसलमान 8 करोड़ थे जिसके 35-35 करोड़ बढ़ गए हैं हिंदुस्तान में, और दूसरे बाहर से मुसलमान आ गए वो बढ़ गए हैं, उनको आश्रय दे रहे हो, वे बढ़ गए हैं। आप अपनी संस्कृति बढ़ाओ। हमारे से प्रश्न पूछते हैं कि ऑपरेशन नहीं करावे और नसबंदी नहीं करावे तो क्या करें? संयम तो हमारे से होता नहीं, फिर लड़का लड़की हो, और मैं कहता ही हूँ लड़का लड़की होना चाहिए, समझते ही नहीं। हमारा अर्थ ऐसा समझा कि नसबंदी मत कराओ, ऑपरेशन मत कराओ, और संतोष हो, संतान तो होना नहीं चाहिए। अरे मैं नहीं सर, मैं कहता हूँ संतान होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब उल्टा अर्थ लेते हैं तो हम क्या करें बताओ, उपाय बताओ। तो उपाय आप खोजते हो, मैं उपाय कैसे बताऊंगा? वंश के नाश करने का उपाय बताऊंगा मैं तो आपके वंश चाहता हूँ। अरे आप तो बात कहे क्या हर सुबह लगाते हैं राम राम राम, पता लगा हमारे को कि लोग क्या समझते हैं। ये ऑपरेशन करना बंद करो, ये तो स्वामी जी कहते हैं, परंतु हम करें क्या, हमें संतान ज्यादा पैदा हो जाएगी तो हम क्या करें, ये दशा है, ये प्रश्न आया हमारे पास में। मैं किस भाव से कहता हूँ, क्या भाव पड़ता है राम राम राम, मेरे को आश्चर्य आता है कि मैं क्या क्या कहता हूँ, क्या क्या सुनते हो और क्या समझते हो, आश्चर्य आता है। चलाओ भाई कराओ, पाठ कराओ, नारायण देरी हो जाएगी जाते हैं।